ललित सखी गण में तव शाखे राधे जय जय माधव जय जय राधे जय जय माधव जय जय करुणां कुरु मयि करुणा भरी ते करुणां कुरु मयि करुणा भरी ते सनक सनातन वाण चरिते सनक सनातन वाण चरिते राधे जय जय माधव जय जय राधे जय जय माधव जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधे जय जय माधव जय जय राधे जय जय माधव जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशो यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा
जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय
जय हो कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय हो कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय हो कृष्णा बलराम बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम गौरनिताय जय परमेश्वराचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट हो विश्वपाद परमेश्वराचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। नामाचार्य शिला ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन मथा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुनदीप धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धाम हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे हरे हरे गौर शिला प्रभुपाद की जय। से ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यामनुष्ठां स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यां ददाति सवदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवाक्ष च श्रीरूपां सागर जातां सैगण रघुनाथ विदं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सैगण ललिता श्री विशाखानामितां
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाचा कल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपादधं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरु दीन तारणम् आराधयो भगवान ब्रजेश तन्नेस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम नम प्रेमापमर्दो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्रादरो न पर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सुस्वागतम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो भागवतम कक्षा में आप सब वैष्णव जन वैष्णव इसका हार्दिक अभिनंदन। तो आज का श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 7 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 25 क्या करें पहले श्लोक पढ़ें या पहले शब्दार्थ करें हाँ क्या करना चाहिए शब्दार्थ चलिए रजा तमहा रजो तथा तमो गुण च तथा सत्वेना सत्व गुण विकसित करने से सत्वाम सत्वगुण च भी उपशमेना आसक्ति त्यागने से च तथा एतत् ये सर्वं सभी गुरौ गुरु में भक्त्या भक्ति पूर्वक सेवा करने से पुरुषः पुरुष ही निस्संदेह अंजसा सरलता से जय विजय पा सकता है। तो श्लोक दोहराएंगे मेरे पीछे रजस्तमश्चा सत्वेना सत्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जयेत् रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं च पशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो हि अञ्जसा जयेत्। रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं च पशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो हि अञ्जसा जयेत्। बोलिए रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं च पशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या रजस्तमस्सत्वेन सत्वेन सत्वं च पशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो हि अञ्जसा जयेत्। सत्वमश्चस्त्वेन सत्वं च पशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो हि अञ्जसा जयेत्। चलिए अनुवाद और शिला तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की मेरे पीछे अनुवाद हो रही है। मनुष्य को सत्वगुण विकसित करके रजोगुण तथा तमोगुण को जीतना चाहिए और तब शुद्ध सत्व के पद तक उठकर सत्वगुण से विरक्त हो लेना चाहिए। यदि कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगा रहे तो यह सब कुछ स्वतः हो सकता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर विजयी पाई जा सकती है। तात्पर्य किसी रोग के मूल कारण का उपचार करके सभी शारीरिक वेदनाओं एवं क्लेशों को जीता जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई गुरु के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति रखे तो वह सतो रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव पर सरलता से विजय पा सकता है। योगी तथा ज्ञानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने हेतु कई प्रकार से अभ्यास करते हैं, किंतु भक्त को गुरु की कृपा से तुरंत ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यदि गुरु अनुकूल हों तो मनुष्य को सहज ही भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है और भगवत कृपा प्राप्त होने पर वह इस संसार में सतो रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव को जीत कर तुरंत दिव्य बन जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है, सगुणा समति दैत्यान भ्रम भुआ कल्पते। यदि कोई गुरु के आदेशों के अनुसार चलने वाला परम भक्त हो तो उसे सरलता से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है और वह तुरंत दिव्य पद पर आरूढ़ होता है, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो ये जो संवाद है ये किसके बीच में हो रहा है, ये तो सब आप जानते ही होंगे। ये श्लोक किसके द्वारा बोला जा रहा है? नारद मुनि जी। और किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। ये संवाद चल रहा है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के। सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश यहाँ नारद मुनि, हम जैसे जीवों के लिए उपदेश दे रहे हैं, किस प्रकार से सुसंस्कृत हम बन सकते हैं, इसका पाठ करके इसका अपने जीवन में इसको उतार के किस प्रकार से हम सुसंस्कृत बन सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को तो सुसंस्कृत बनने की आवश्यकता नहीं थी, उनको निमित्त बना करके हमारे लिए ये सारे उपदेश दिए जा रहे हैं। तो आज के इस बड़े महत्वपूर्ण श्लोक में यहाँ पर कहा जा रहा है नारद मुनि के द्वारा कि मनुष्य को सत्व गुण विकसित करके, आप जानते हैं तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और ये त्रिगुणमयी माया है भगवान की, त्रिगुणमयी भगवान इस त्रिगुणमयी माया के साथ एक खेल खेलते हैं। तो भगवान की त्रिगुणमयी माया है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और सारे जीव जो है विवश होकर के उनको कार्य करना ही पड़ता है, इन गुणों के प्रभाव से विवश होकर उनको कार्य करना पड़ता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए रह सके। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। विमूढ़, विमूढ़ मतलब विशेष रूप से जो मूढ़ है, मूर्ख है, मूढ़ नहीं कह रहे भगवान, विमूढ़। तो ये बहुत ही एक तीन गुणों का जो खेल है इस जगत में, जिसके वशीभूत होकर के सारा जगत क्रियाशील है, सारा जगत क्रियाशील है केवल इन्हीं गुणों के प्रभाव से। और उसको लगता क्या है कि ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो कैसे होगा, मैं नहीं होऊंगा तो कैसे ये घर चलेगा और कैसे ये संसार चलेगा, मेरे होने से ही तो सब चलायमान है। तो ये विमूढ़ भगवान कहते हैं कि ये गुणों के प्रभाव से जो है कोई व्यक्ति सत्वगुण में है तो वो सात्विक कार्य करता है, कोई व्यक्ति के अंदर रजोगुण की प्रधानता है तो वो राजसिक कार्य करता है, और किसी के अंदर तमोगुण की प्रधानता है तो वो तामसिक कार्य करता है। तो ये गुणों का प्रभाव सब जीवों के अंदर होता है, सब जीवों के अंदर सत्वगुण भी है और सब जीवों के अंदर रजोगुण भी है और सब जीवों के अंदर तमोगुण भी है, लेकिन किसी के अंदर किसी की प्रधानता ज्यादा है और किसी के अंदर किसी की प्रधानता, तो जिसकी प्रधानता जिसमें ज्यादा होती है उसको वैसा मान लिया जाता है, भाई ये व्यक्ति तो सत्वगुणी है, ये व्यक्ति सत्वगुणी है, ये तो बहुत किसी में ना द्वेष देखता है ना ईर्ष्या करता है, ना इसका कोई लाभ की इच्छा है ना हानि की भी इसको परवाह है, और ये तो जो है बिल्कुल आपस में संतुष्ट रह करके अपने आप में कार्य करता है, ये व्यक्ति बड़ा सरल है, सत्वगुणी है ना। और जो व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, अहंकारवश बहुत अधिक मेहनत करता है, बहुत लाभ कमाने के प्रयास करता है, सोचता है कि मैं अधिक से अधिक लाभ कमाऊं, अधिक से अधिक अपने और अपने परिवार का उनके जीवन को जो है सुखमय बनाऊं, संघर्षमय जीवन बिताता है, तो देख करके हम निर्णय कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, रजोगुणी है, रजोगुणी व्यक्ति है, ये तो सारा दिन संघर्ष करता है। और जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, शास्त्र के विरुद्ध चलता है, शास्त्र कहता है कि मांसाहार मत करो तो वो मांसाहार करेगा, शास्त्र कहता है चोरी मत करो तो वो चोरी करेगा। मतलब समस्त नियमों का उल्लंघन करते हुए और प्रमाद में आलस्य में जो व्यक्ति ऐसा रहता है तो हम देख करके निर्णय ले सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है तमोगुणी है, ये व्यक्ति तमोगुणी है। तो ये तीन गुणों का खेल, कोई व्यक्ति सतोगुणी, कोई व्यक्ति रजोगुणी, कोई व्यक्ति तमोगुणी। और ये केवल मनुष्यों में नहीं, सब जीवों पर ये बात लागू है। आप देख सकते हैं जब हम गौ माता के दर्शन करते हैं तो क्या लगता है, सतोगुणी, सतोगुणी जीव है। और बंदर को देखेंगे तो घबरा जाएंगे एक बार को, या हाथी है, शेर है, ये अलग अलग गुणों में जो है ये सबका अपना अपना इनका स्वभाव है। तो किसी का रजोगुणी स्वभाव है, किसी का सतोगुणी स्वभाव है, किसी का तमोगुणी स्वभाव। तो जो पशु है वो अपना स्वभाव बदल नहीं सकते, जो सतोगुणी है पशु वो सतोगुणी रहेगा, जो रजोगुणी है वो रजोगुणी रहेगा, और जो तमोगुणी है वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि गाय जो है आपका चश्मा छीन के भाग जाए। गाय चश्मा छीन के नहीं भागेगी, है ना। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम अपने गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा। और आज इसी श्लोक पे चर्चा है कि गुणों में परिवर्तन कैसे आ सकता है और हमें कौन से गुण में पहुंचना है। तो आज का जो श्लोक है, तो मनुष्य को सबसे पहले जब हमारा जन्म होता है तो हम सभी तमोगुण में होते हैं। जो हम पहला पढ़ते हैं ना मंगलाचरण, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, मेरे गुरु ने, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरे चक्षुओं को खोल दिया, मेरे अंधकार को दूर किया। तो कैसे दूर किया, तो हम उत्पन्न तो हुए थे तमोगुण में और हमारा सारा जीवन जो है तमोगुण और रजोगुण में ही बीतता। इसीलिए इस श्लोक में यहां पर नारद मुनि कहने हैं कि ठीक है हम सतोगुण में नहीं हैं, रजोगुण में हैं और तमोगुण में हैं, लेकिन सतोगुण का विकास करना है। क्यों, क्योंकि हमको ठाकुर जी ने ये क्षमता प्रदान की है, हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और योनि में ये कार्य नहीं किया जा सकता कि अपने गुणों को बदल दिया जाए। भगवान कहते हैं न देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले न भस्वतेरितम पुमान भवाब्देम न तरे स आत्मा। ये जो मनुष्य जीवन तुमको प्रदान किया गया है ये सुलभता से प्राप्त हो गया, इसके लिए हमने कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन इसको प्राप्त करना भगवान कहते हैं बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है इसको प्राप्त करना, सरल नहीं है। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करते 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 उसको अवसर प्रदान किया जाता है कि चलो इस बार इसको एक अवसर दे दो, देखते हैं कि ये तीनों गुणों को पार कर पाता है कि नहीं। तो न देहम आद्यम सुलभम सुकल्पम, सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और भगवान कहते हैं ये जो शरीर है इसकी तुलना नौका के समान है, नौका है ये मनुष्य जीवन जो है नौका के समान है, तो नौका क्या करेगी, इस भव सागर से पार करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के सागर से, ये त्रिगुणमयी को पार करने के लिए, ये रजस तमस और सतोगुण को पार करने के लिए नौका दी गई। ये केवल मनुष्य को मिली है नौका, और किसी योनि में ये नौका की संभावना नहीं है। तो यहां कह रहे हैं प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। अब नौका मिल गई है तो नौका तो हमको चलानी नहीं आती है, कैसे पार जाएंगे, कौन चलाएगा नौका? तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, गुरु कर्ण धारम, ये गुरु जो है आपकी नौका का नाविक बनने वाला, गुरु नौका का नाविक बनेगा। ठीक है, तो नौका मिल गई, नाविक मिल गया, तो फिर नाव चल देगी? भगवान कहते हैं नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं चलेगी। नौका भी है मनुष्य जीवन के रूप में, गुरु भी आ गए, तो आगे क्या कहते हैं, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया अनुकूलेन नभस्वते रितम। भगवान कहते हैं कि नौका तब चलेगी जब वायु अनुकूल होगी, अगर वायु प्रतिकूल है तो नौका कैसे आगे बढ़ सकती है, वायु अनुकूल होने चाहिए। तो वायु अनुकूल क्या है, भगवान कहते हैं मेरी भगवत गीता भागवतम ये अनुकूल वायु है, मेरे उपदेश ये अनुकूल वायु है। अगर नौका तो मिली गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, गुरु कर्ण धारम हमको प्राप्त अगर नहीं हुए हैं तो होने चाहिए, और फिर भगवान के उपदेश प्राप्त होंगे जो अनुकूल वायु है, पुमान भवाब धिम्न तरित सात्मा, अगर इतने पर भी कोई व्यक्ति अपनी नौका को पार नहीं लगाता तो अपनी ही आत्मा का हत्यारा है, अपनी ही आत्मा का हत्यारा। तो हमको रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना है, कहां पहुंचना है, सतोगुण, और सतोगुण पे पहुंच के फिर सतोगुण को भी छोड़ना, सतोगुण पर टिके नहीं रहना। सतोगुण हमको सुख से बांधता, वो भी बंधन है, वो भी जन्म मृत्यु से बाहर हमको नहीं निकाल पाएगा, सतोगुण सुख से बांध देगा। सतोगुण सोने की हथकड़ी है, रजोगुण चांदी की हथकड़ी है, और तमोगुण लोहे की हथकड़ी है, है तो हथकड़ी। इसीलिए हमको क्या बोला जाता है, बद्ध जीव, बद्ध जीव, हमको बंदी बना लिया गया, इस शरीर में हम बंदी हैं और इस संसार में भी हम बंदी हैं। तो बंदी जीवात्मा को मुक्त होना है, इसी के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। तो सतोगुण भी बंधन है, तो आज इस श्लोक में कह रहे हैं कि सतोगुण विकसित करके रजोगुण तथा तमोगुण को जीतना है, और जब आप सतोगुण पे पहुंच जाओगे फिर सतोगुण को छोड़ करके शुद्ध सतोगुण पे पहुंचा। और ये कार्य कैसे होगा, तो ये कार्य जो है होगा यदि कोई गुरु के आदेशों के अनुसार चलने वाला परम भक्त हो तो उसे सरलता से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। यानी कोई गुरु की सेवा में लगा रहे तो फिर ये कार्य स्वतः हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। गुरु के आदेश और भगवान के आदेश एक ही होते हैं, उनके आदेशों का पालन करना यही हमको करना है, तो फिर ये कार्य स्वतः हो जाता। भगवान जो है इसमें एक बात हमको ये देखनी है कि भगवान निस्त्रय गुण भाव अर्जुना कहते हैं अर्जुन को, कहे अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो, तीनों गुणों से ऊपर उठो। और यही बात यहाँ पर श्लोक में भी यहाँ पर बताया गया है कि सगुणान समेतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि व्यक्ति जो है तीनों गुणों को प्राप्त करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। लेकिन साथ में भगवान एक श्लोक में ये भी कहते हैं, 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में क्या कहते हैं, न तदस्ति पृथ्वीयां वा दिव्य देवेशु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर जैव मुक्तम यदेवि स्यात्रिभिर् गुणे। इस श्लोक में अथवा स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। यह भी भगवान ही कह रहे हैं। भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं निस्त्रय गुण भव अर्जुना, तीनों गुणों से ऊपर उठो, और फिर भगवान कहते हैं कि इस लोक में स्वर्ग लोकों में किसी भी लोक में इस 14 भुवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तीन गुणों से मुक्त हो। तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसी बात कि मुक्त हो, और क्यों कह रहे हैं कि हमको मुक्त होना है इस श्लोक में, तीनों गुणों को छोड़ करके हमें शुद्ध सत्वगुण तक पहुंचना है, यह भी एक बात है। और एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुणों से कोई मुक्त नहीं है। क्या विचार है आपका इस बारे में, है कुछ मंथन की आवश्यकता या नहीं है? कोई आवश्यकता नहीं मंथन की है, ये चर्चा का विषय है ना, भागवतम आपस में चर्चा होनी चाहिए। कौन बताएगा, यहाँ बड़े बड़े हमारे बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं। यस प्रभु, कोई प्रकाश डालेगा आप में से? कोई नहीं। हाँ जी, हाँ भगवान तो कह भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। हाँ, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माँ में विश्व सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। ठीक है, मैं तो आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, अच्छे से हमको इस बात को समझ लेना चाहिए। ये ठीक है, ये पूरा जगत त्रिगुणमयी माया के द्वारा बना हुआ है, पूरा जगत त्रिगुणमयी माया के द्वारा बना हुआ, ठीक है। लेकिन कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए बोलते तो हैं हम, लेकिन इसको थोड़ा सा चिंतन करना, ये चिंतन का विषय है कि जहां आप कृष्ण कृष्ण पुकारेंगे वहां माया का प्रभाव नहीं रह सकता, वहां माया का प्रभाव नहीं रह सकता। ये ठीक है कि सर्वत्र माया है, ये देवी धाम है, हम वृंदावन धाम की बात नहीं कर रहे या भगवान के किसी धाम की बात नहीं कर रहे, ये सर्वत्र 14 भुवन जो है ये देवी धाम कहलाता है, लेकिन जहां कहीं भी हम कृष्ण का नाम पुकारेंगे वहां माया नहीं रह सकती, वहां माया नहीं रह सकती है ना। तो इस बात को जब हमको समझ में आ जाती है ना, माया मुक्त जीवेरा नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, तो माया मुक्त है जीव और उसको भगवान का ज्ञान हो नहीं सकता ऐसे। तो इसीलिए भगवान ने जो है वेद और पुराण दिए, वेद और पुराण दिए, और एक है ग्रंथ भागवत और एक है भक्त भागवत। तो गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जो है इस बात को समझ पाएगा कि किस प्रकार से ये जगत जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा पूरा है, इसमें हम माया से विलग होकर के कैसे रह सकते हैं। जैसे भारत वर्ष में अगर आप दिल्ली में जाएंगे, नई दिल्ली में, तो अनेक प्रकार के जो है वहां पर राजनिवास हैं, एम्बेसीज हैं, अमेरिकन एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी है, अनेक प्रकार की एम्बेसीज हैं। वो हैं कहाँ? भारत में, नई दिल्ली में स्थित है। और भारत में जो कानून है, जो नियम है भारत सरकार का, वो अगर आप उस अमेरिकन एम्बेसी में चले जाओगे तो वहां पर भारत का कानून लागू नहीं होगा। वहां किसका कानून लागू होगा? अमेरिका का कानून लागू होगा। वो है भारत में, लेकिन अगर आपने अमेरिकन एम्बेसी में जाकर के कोई ऐसा कार्य किया तो आपके ऊपर नियम कहां के लागू होंगे? अमेरिका के नियम के कानून के अनुसार आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये जगत माया का है, लेकिन जितने भी यहां शिला प्रभुपाद के मंदिर हैं वो सब वैकुंठ निवास, वहां माया का अधिकार नहीं, वहां माया का अधिकार नहीं। तो भगवान से संबंधित जो भी कार्य है, चाहे वो भागवतम का श्रवण है, चाहे हरिनाम है, कोई भी कार्य, कीर्तन है, प्रसादम है, कोई भी कार्य, तो जितने भी भगवान से संबंधित जो भी वस्तु है वहां माया का अधिकार नहीं हो सकता, माया का अधिकार नहीं हो सकता। जब सनातन गोस्वामी मिले महाप्रभु से तो कहा कि के आमी, मैं कौन हूं? के आमी, के में केने हमारे जारे तापत्रय, मैं कौन हूं? मेरे को ये तीन प्रकार के ताप क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? यह नहीं जानी, मैं नहीं जानता कि तीन प्रकार के ताप मेरे को कौन दे रहा है, कौन मेरे को तीन प्रकार के ताप दे रहा है? के मने हित भय, और मेरा हित किस में है मैं नहीं जानता। तो महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भूलिया सही जीव अनादिर बहिर्मुखा, अतः माया तारे दया संसार दुख। जब मुंह बंद रहेगा ना, बस माया झपट लेगी, माया झपट लेगी। तो कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतः माया तारे देया संसार दुख। ये महाप्रभु बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से जो है हमको हर समय भगवान के नाम का और भगवान की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए और गुरु की कृपा से ये कार्य स्वतः हो जाता है। गुरु की कृपा से ये कार्य स्वतः हो जाता है। तो अब गुरु कौन है भाई, कितने गुरु हैं और कौन से गुरु की कृपा से होगा? दीक्षा गुरु की कृपा से होगा कि शिक्षा गुरु की कृपा से होगा, या वर्तम प्रदर्शक गुरु की कृपा से होगा, या चैत्य गुरु की कृपा से होगा? चार प्रकार के गुरु बताए गए हैं। कौन से गुरु की कृपा से हम इस त्रिगुणमयी माया को जीत लेंगे बताइए, ये भी एक प्रश्न है। हाँ, शिक्षा, दीक्षा, जब हम भक्ति में पदार्पण करते हैं तो हमारा संबंध शिक्षा गुरु के साथ बनता है, और शिक्षा गुरु या तो हमें दीक्षा गुरु से संपर्क करवाते हैं या वो शिक्षा गुरु भी दीक्षा गुरु बन सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। तो एक तो हो गए शिक्षा गुरु और एक हो गए दीक्षा गुरु। ये तो तब की बात है जब हम भक्ति में पदार्पण करते हैं तो हमारे शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद, जिसके कारण से हमको मार्ग दिखा इस्कॉन का, और फिर हमारे जीवन में दीक्षा गुरु भी आए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो सेवा भी सबको प्राप्त हो जाए ये आवश्यक नहीं है। गुरु तो कहीं भी रहते हैं, पर उनके वचनों को सुनना वो भी एक सेवा है, उनकी कथा को सुनना और उनके उपदेशों को पालन करना ये भी एक सेवा है, ये नहीं कि वो सेवा नहीं है। तो कौन सी सेवा, यहां पर लिखा जा रहा है, यदि कोई गुरु के आदेशों के अनुसार चलने वाला परम भक्त हो तो उसे सरलता से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है, वह तुरंत दिव्य पद पर आरूढ़ होता है। तो गुरु की कृपा तो मिलती ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम करेंगे विस्तार। जब हम कहते हैं वंदे हम श्री गुरु श्री पद कमलम, क्या मतलब? वंदे हम श्री गुरु, श्री गुरु मतलब जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो मेरे, मैं उनको नमस्कार करता हूं, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं और शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। फिर आगे क्या है, श्री युद्ध पद कमलम, उनके श्री चरण, मैं प्रणाम करता हूं अपने आध्यात्मिक गुरु के श्री चरणों को। फिर आगे क्या है, वंदे हम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरुन, गुरुन का क्या मतलब हुआ, प्रणाम करता हूं समस्त गुरुओं को, केवल अपने गुरु को नहीं, जितने भी गुरु हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। चलो समस्त गुरुओं को प्रणाम कर लिया, फिर आगे क्या है, वैष्णवाश्च, समस्त वैष्णव को प्रणाम करता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम गुरु की सेवा, अपने गुरु की सेवा करते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम गुरु वर्ग को देखते हैं, ये गुरु वर्ग है, मेरे को जिसकी सेवा करने का अवसर मिलेगा मैं उसकी सेवा करूंगा, और केवल गुरु की नहीं जितने वैष्णव हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। उनकी भी सेवा की मेरी अभिलाषा होनी चाहिए। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो ये जो गुरु जो शब्द है ये केवल अपने आध्यात्मिक गुरु तक ही सीमित नहीं है कि मेरे को केवल अपने गुरु से मतलब है भाई, मैं और किसी के साथ मेरा कोई अर्थ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत्पत कलम श्री गुरुन, सारे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं, सारे गुरुओं की कृपा चाहिए मुझको, सारे वैष्णव की कृपा चाहिए मुझको। और ये कार्य जब हम करेंगे तो फिर आसानी से सतोगुण से शुद्ध सतोगुण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे हृदय में हमारे मन में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड। प्रभुपाद प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं सबको, चाहे वो सन्यासी के रूप में है चाहे वो गृहस्थ के रूप में है, सभी को हमें प्रणाम करना, सभी का आशीर्वाद चाहिए, सभी की कृपा चाहिए, कोई भी हो। तो गुरु जो है केवल ये नहीं समझना कि केवल मेरे आध्यात्मिक जिनसे मैंने दीक्षा ली है उन्हीं की ही मेरे को सेवा करनी है और किसी से मेरा कोई मतलब। तो जब मंदिर में कोई भी सेवा करते हैं तो समस्त गुरुओं की सेवा हो जाती है। मंदिर में हम सेवा करते हैं ना, तो शिला प्रभुपाद की सेवा हो रही है। शिला प्रभुपाद इस्कॉन का मतलब पर्सोनिफाइड प्रभुपाद, और आप प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं तो प्रभुपाद के साथ जितने भी गुरु हैं, गुरु वर्ग जुड़ा हुआ, जितने भी वैष्णव जुड़े हुए हैं उनकी सेवा स्वतः हो रही है। ये भी एक कि हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें प्रभुपाद की सेवा करनी है, प्रभुपाद के ग्रंथों का हमें अध्ययन करना है, प्रभुपाद का जो ये मिशन है इसको आगे बढ़ाना है। तो इससे करने से सारा गुरु वर्ग की सेवा स्वतः हो जाती है, सारे गुरु वर्ग की सेवा स्वतः हो जाती है और सारे वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य, वो अपना एक गांव में उनको जाना था प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया कि भाई फलां गांव में जाना है तो जाओ वहां जाके देखो क्या व्यवस्था बनती है हमारे ठहरने की, आप जाओ जरा देख के आओ। तो उस गांव में श्री रामानुजाचार्य के दो शिष्य रहते थे। एक शिष्य जो है वो काफी संपन्न था, काफी धनवान था, और एक शिष्य जो है वो बाह्य रूप से निर्धन था। अब जब रामानुजाचार्य जी के शिष्य वहां पहुंचे हैं अपने गुरु भाइयों के पास, तो पहले जो धनवान शिष्य था बोले वहां चलते हैं, काफी लंबा सफर तय करके थके हारे वो वहां पहुंचे उनके घर में, वांछा कल्प करो भिक्षा कृपा सिंधु है वचा पतिता नाम पावने व्यो वैष्णव व्यो नमो नमा। कैसे हैं गुरु भाई? बहुत अच्छा, आपस में बात हुई, कैसे आना हुआ? बात यह है गुरु महाराज आना चाहते हैं। अच्छा, गुरु महाराज आना चाहते हैं, अरे वाह क्या बात है। तो गुरु महाराज को कहो आप केवल मेरे यहां रुकेंगे और कहीं नहीं, मैं आपके पूर्ण रूप से जितना मेरे अंदर क्षमता है मैं आपकी सेवा करूंगा। बोल दीजिए जाके गुरु महाराज को कि किसी प्रकार की कमी मैं नहीं आने दूंगा, सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। तो शिष्य ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपका संदेश आपको पहुंचा देंगे, गुरु महाराज को पहुंचा देंगे। उसके बाद में वो फिर जो दूसरे शिष्य थे जो बाह्य रूप से निर्धन थे, जब उनके पास गए तो वो उनसे भी वही बात कही कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज आ रहे हैं गांव में और हम व्यवस्था देखने आए हैं कि कहाँ उनका जो है निवास किया जाए। तो उस शिष्य ने भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको सेवा का अवसर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप आसन ग्रहण कीजिए, आप इतनी दूर से थक के आए हो, आप जलपान करो, मैं पहले आपकी सेवा करना चाहता हूं क्योंकि आप गुरु महाराज के परिकर हैं और आपकी सेवा करने से गुरु महाराज की सेवा का मुझको फल मिलेगा। और उनको अच्छे से बिठाया, जलपान कराया, उनका पूर्ण रूप से उनका आतिथ्य किया और कहा मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना अवश्य करूंगा। तो दोनों शिष्यों से मिलने के बाद जब रामानुजाचार्य जी के पास वो पहुंचे तो उन्होंने पूछा क्या समाचार लाए हो। बोले दोनों आपके शिष्य जो है बड़े आतुर हैं आपकी सेवा करने के लिए, वो आपका स्वागत करना चाहते हैं। बोले अच्छा, तो आपका क्या आतिथ्य किसने किया, दोनों ने आपका सत्कार किया। तब बोले महाराज हमको तो उन्होंने जल भी नहीं पूछा, जो धनवान थे उन्होंने जल भी नहीं पूछा, लेकिन जो निर्धन थे उन्होंने हमारा बहुत सत्कार किया, उन्होंने तो हमको जाने ही नहीं दिया, ऐसे जितना उन्होंने हमारा सत्कार किया, खिलाया पिलाया सब कुछ किया और बोला जितना हो सकेगा हम अवश्य करेंगे महाराज जी का। तो बोले महाराज बोले हम उन्हीं के घर जाएंगे जहां तुम्हारा सत्कार हुआ है। हम वहीं जाकर रहेंगे जहां तुम्हारा सत्कार हुआ है। तो ये भावना का विकास हम सबको करना है। जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, जिन्होंने प्रभुपाद को देखा है, हम चाहे सामर्थ्य नहीं भी है हमारे अंदर तो मानसिक रूप से भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ये तो खेल सारा भाव का है कि हमारा भाव क्या है, और भाव जो है ये एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रकट हो जाता। तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम कर सकने की स्थिति में है या नहीं है इससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा भाव है कि नहीं। अगर भाव नहीं है तो फिर कैसे गुरुवर प्रसन्न होगा, कैसे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे और कैसे हम तीन गुणों से मुक्त होकर के शुद्ध सत्वगुण पर पहुंचेंगे। ये एक आत्ममंथन का विषय है कि हमें सबसे सेवा का भाव रख करके और सबको प्रणाम करना है, क्योंकि हम जिस गुणों में फंसे हुए हैं उनसे मुक्त तभी हो सकते हैं जब वैष्णव प्रसन्न हो जाए, जब गुरु प्रसन्न हो जाए, जब सारी वैष्णव परंपरा प्रसन्न हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण की शिल प्रोपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।